रविवार 29 मई दिन भर के साथ में निखिल रंजन। दिल्ली में अफ्रीकी नागरिकों से मारपीट के मामले में 5 लोग पकड़े गए। पुलिस का दावा, नस्ली नहीं थे झगड़े।
इन गांवों में कोई 200-250 हमारे जो अफ्रीकन बंधु है उनके किराए पे रहते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ इधर उधर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर गांव में ऐसा रशियल वो होता तो क्या कोई भी रह पाता? वो सारे वहीं रह रहे हैं।
पहले विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई के पूरे हुए 100 साल, जर्मनी और फ्रांस ने किया उन पलों को याद। रविवार विशेष में पूर्व विदेश सचिव M.K. रसगोत्रा के दिलचस्प कूटनीतिक करियर की दास्तान।
बात बात पर ताना मॉस्को पे, ख्रुश्चोव पर और उसको हिदायत, वो बेचारा बैठा सुन रहा था तो उसको गुस्सा।
चर्चा होगी IPL के फाइनल मुकाबले की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, हरिता कांडपाल से। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमले के सिलसिले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 अलग अलग मामलों में 6 अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमले की शिकायत की गई थी। इन हमलों में अफ्रीकी मूल के लोगों को चोटें भी आई हैं। कुछ दिन पहले कांगो के एक छात्र की पिटाई की गई थी जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद अफ्रीकी देशों के राजनयिकों ने भारत सरकार के अफ्रीका डे समारोह के बहिष्कार की भी घोषणा की थी। भारत में पढ़ रहे अफ्रीकी मूल छात्रों का संगठन मंगलवार को नस्लभेद के खिलाफ दिल्ली में एक रैली निकालेगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले 3 दिनों में भूमध्य सागर में नाव हादसों में 700 से ज्यादा प्रवासियों के डूबकर मरने की आशंका है। पिछले हफ्ते इटली की नौसेना ने एक नाव हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद की थी। इस हादसे में ज्यादातर प्रवासियों को बचा लिया गया था। बताया जा रहा है कि इनमें से 100 प्रवासी अभी भी लापता है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी मामलों की एजेंसी UNHCR की प्रवक्ता कार्लोटा सेमी ने ये कहा।
From the survivors that are still landing in Italy, we heard that at least 700
नाव हादसों में बचने वाले लोग बता रहे हैं कि कम से कम 700 लोग या तो मारे गए हैं या तो लापता हैं। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को हुए नाव हादसों में मारे गए लोगों में से कई शव बरामद कर लिए गए हैं। कई और घटनाएं हैं, जैसे कि एक नाव पर 4 महिलाओं की दम घुटने और जलने से मौत हो गई है और अब हमारे पास 9 महीने का एक अनाथ बच्चा है। ये थे कार्लोटा सेमी के शब्द। गर्मी के मौसम को देखते हुए अफ्रीका से यूरोप आने वाले प्रवासियों की संख्या इन दिनों बढ़ गई है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ईरान के संस्कृति मंत्री ने कहा है कि अब ईरान के नागरिक हज के लिए सऊदी अरब के मक्का नहीं जाएंगे। ईरान के संस्कृति मंत्री अली जन्नती ने इस मामले में रोड़े अटकाने के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल हज के दौरान मक्का में शैतान पर पत्थर फेंकने की रस्म के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 700 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें ज्यादातर ईरान के लोग शामिल थे। ईरान ने भगदड़ के लिए सऊदी अरब सरकार को जिम्मेदार ठहराया था और माफी मांगने की मांग की थी। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में रूस समर्थित अलगाववादियों के साथ झड़पों में 5 सैनिकों की मौत हो गई है। दोनों पक्षों के बीच फरवरी में युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर इसे तोड़ने का आरोप लगाते रहे हैं। क्राइमिया के अलग होने से पहले हुए संघर्ष में करीब 9,000 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने के मसले पर रायशुमारी को कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, लेकिन इन दिनों प्रधानमंत्री डेविड कैमरन अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने डेविड कैमरन पर प्रवासियों की संख्या पर लगाम कसने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। BBC समाचार।
BBC रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ मारपीट और छेड़खानी की घटनाओं ने सिर उठा रखा है। इसे लेकर अफ्रीकी देशों ने नाराजगी भी जताई है। मामले की गंभीरता इस बात से भी समझ में आती है कि अफ्रीकी देशों के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी सिलसिले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कल शाम को भी विदेशी नागरिकों से झड़प हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ईश्वर सिंह ने BBC से बातचीत में कहा कि ये नस्लभेदी हमला नहीं था। हमारे सहयोगी वैभव श्रीवास्तव ने ये बातचीत की थी, आप भी सुनिए।
वैभव, दो यहाँ पे गांव है, एक है मैदान गढ़ी, मैरोली थाने के इलाके में है दोनों गांव, मैदान गढ़ी और राजपुर खुर्द, दोनों एकदम जो ट्रेडिशनल गांव है, अभी भी डिस्पाइट के दिल्ली में है लेकिन अभी भी उनका रहन सहन का तरीका वही गांव वाला है। पहला जिस तरह का वो अनफॉर्चुनेटली मीडिया के कुछ बंधुओं द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि रेशियल अटैक है, ऐसा कतई नहीं है पहली बात। दूसरी बात, ये जो तीन चार इंसिडेंट हुआ अलग अलग लोकेशन से अलग अलग टाइम पे हुआ। एक इंसिडेंट में बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बजा रहे थे हमारे अफ्रीकन बंधु, वहां पे पार्टी कर रहे थे और बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक, जिससे वो पड़ोसियों को परेशानी हुआ, उन्होंने आगे कहा कि भी आप इसको जरा बंद कर लीजिए, इसकी आवाज धीमी कर लीजिए, उस पे कहीं उनका झगड़ा हुआ। बट एब्सोल्युटली कोई उसमें कोई किसी को चोट नहीं, इंजरी नहीं, कोई माइनस स्कफल उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक और जो इंसिडेंट हुआ उसमें वो रास्ते में शराब पी रहे थे गाड़ी पे ग्लास रख के, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपको शराब पीना है तो आप अपने कमरे में जाके पी लीजिए। ये एक एंटायरली डिफरेंट इंसिडेंट है जिसके बारे में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई आपको शराब पीना है तो अपने कमरे में जाके पीजिए। अच्छा, वो करते क्या, शराब पीते हैं और फिर आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, तो सर्टेनली डजंट लुक, उसको उन्होंने ऑब्जेक्ट किया पड़ोसियों ने, तो उस पर फिर अगेन एक माइनर स्कफल हुआ, उसमें कहीं कोई किसी को कोई इंजरी नहीं, कोई सीरियस इंजरी, लेसरेटेड वॉन्ड्स जो होता है ना, ब्रूजेस उस तरह का, आपस के धक्का मुक्की में। फिर इंसिडेंट में एक और कोई लड़कियां रात को आ रही थी, तो उनसे उन्होंने कहा कि भाई आप ये कहाँ से, पूछ लिया किसी ने कहाँ से आ रहे हैं, तो दे कॉल दियर कलीग, उनके साथियों को बुला लिया, आके फिर वहां झगड़ा हुआ। तो इस तरह की अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इंसिडेंट हुआ, ये कोई कतई भी रेशियल अटैक नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है। अच्छा, ये जो गांव है, इन गांवों में कोई 250 हमारे जो अफ्रीकन बंधु है उन गांवों में किराए पे रहते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ इधर उधर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर गांव में ऐसा रेशियल वो होता तो क्या कोई भी रह पाता, वो सारे वहीं रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, दुकानें खोली हुई हैं उन्होंने, व्यापार कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ऐसा तो कहीं कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कोई रेशियल हेट की बात ही नहीं है। एंड छोटी छोटी इंसिडेंट जिसमें कहीं कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करना, तो सॉरी टू से दैट इट्स अनफॉर्चुनेट।
जो लड़कियां हैं जिन पे हमला हुआ है, एक युगांडा की रहने वाली हैं, एक दक्षिण अफ्रीका की, क्या कोई छेड़खानी का मामला है या केवल झड़प का मामला है?
कोई छेड़खानी, उन्होंने तो कोई कंप्लेंट ही नहीं किया, किसी ने भी चारों केसेस में किसी ने भी कोई कंप्लेंट नहीं किया। वो तो हमने चूंकि भाई नहीं, हमारे अफ्रीकन बंधु हैं या रह रहे हैं, इनके खिलाफ अगर कोई बात करता है तो वो हम वो उसको नहीं होने देंगे। अभी मैंने एक मीटिंग किया दोनों गांवों का इकट्ठा जॉइंटली, उसमें मीटिंग में भी यही निकल गया कि नहीं साहब हमारा तो कहीं कोई नहीं, तो यहाँ आराम से रह रहे हैं, काफी दिन से रह रहे हैं, हमें तो कभी कोई ऐतराज नहीं। थोड़ा बहुत उन्हें ये बताया कि साहब एक तो लाउड म्यूजिक बजाते हैं उसको, वो थोड़ा सा हमारे बच्चों की पढ़ाई उससे नुकसान होता है, और एक वो शराब जो पीते हैं वो गले में खड़े होकर, मैं ठीक है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, अगर वो गले में खड़े होकर शराब पीते तो वो तो नहीं है। फिर दूसरा, रात को 10 बजे के बाद वैसे भी आप लाउड म्यूजिक नहीं बजा सकते, उसको तो कोर्ट ने बैन किया हुआ है।
जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनके खिलाफ पहले भी कोई ऐसी वारदात या कुछ ऐसी कंप्लेन हुई है दर्ज?
नहीं वैभव, इनमें से किसी के भी खिलाफ, जो भी जितने चार लोग अरेस्ट हैं और एक अप्रीहेंड है जेसीएल है, उसमें से किसी के खिलाफ प्रीवियसली कोई केस दर्ज नहीं है और इस तरह की कोई कंप्लेंट भी नहीं किसी भी तरह का। और वो यहीं पे कुछ एक दो मदानगढ़ी के हैं, एक दो राजपुर गाँव है, दोनों गाँव में अलग अलग फासला है, वहां के रहने वाले।
दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी ईश्वर सिंह वैसे अकेले नहीं हैं जो इस झगड़े को नस्लभेदी मानने से इनकार कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का भी कहना है कि मामूली छोटे मोटे झगड़ों को मीडिया तूल देकर नस्लभेदी बता रहा है। ट्विटर पर वीके सिंह ने लिखा है कि प्रेस वालों को जिम्मेदार नागरिकों की तरह व्यवहार करना चाहिए, पता नहीं वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। खैर, ये तो हुई वीके सिंह की बात, आइए जरा इस बात की भी चर्चा कर लें कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं इस मामले में। नहीं, यहाँ बात कुछ और है। दरअसल कुछ देर पहले वो कर्नाटक के दावणगेरे में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और 2 साल में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि उनके आलोचकों की क्या दिक्कत है।
लेकिन मेरी सरकार ने बिचौलियों से मुक्त भारत बनाने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। अब बिचौलिया नहीं चाहिए, मिडल मैन नहीं चाहिए। हर काम में जो मिडल मैन वाला खेल चला है उसी ने गरीबों को लूटा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में, इस रैली के दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है इस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। यहाँ बात कुछ और।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बीबीसी पर दिनभर में जरा ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी चर्चा कर लेते हैं। आपको याद है कि विश्व युद्ध की सबसे लंबी जंग कौन सी थी? हमें से बहुत से लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उत्तर पश्चिम फ्रांस में ये जंग जरूर हुई थी जो करीब 10 महीने तक चली। लाखों लोगों की इस जंग में मौत हुई और फ्रांस विजयी हुआ, लेकिन आज ये जर्मनी और फ्रांस के बीच समझौते और सहयोग की निशानी बन गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर ने एक साथ आकर इस लड़ाई में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। बीबीसी संवाददाताओं ने पूरी जानकारी जुटाई, आपको सुना रहे हैं वैभव श्रीवास्तव।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल पहले विश्व युद्ध की सबसे बड़ी जंग की 100वीं वर्षगांठ मनाने और मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मिले। ये जंग फ्रांस के उत्तर पूर्वी शहर वर्डन में सन 1916 में 21 फरवरी से लेकर 18 दिसंबर तक चली थी। 10 महीनों तक चली इस लड़ाई में कई हजारों सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद अंत में फ्रांसीसी सेनाओं की जीत हुई थी। पर आज वर्डन को फ्रांस और जर्मनी के बीच आपसी समझौते और संधि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दोनों देशों के प्रमुख नेताओं ने इस समारोह के जरिए यूरोप की एकता को आगे बढ़ाने की बात की। समारोह की शुरुआत में दोनों नेता वर्डन के उत्तर में कॉन्जनवॉय में स्थित जर्मनी के सैनिकों की कब्रों पर फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। इस कब्रगाह में 11,000 जर्मन सैनिकों को दफनाया गया था। इसके बाद दोनों नेता वर्डन के मुख्य हॉल में पहुंचे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने समारोह के दौरान कहा कि वर्डन में जो कुछ भी हुआ उसे याद रखना बहुत जरूरी है।
Und selbst in der Landschaft rund die Stadt hat der Krieg seine Spuren hinterlassen bis heute.
इतने साल पहले हुई लड़ाई के आज भी निशान देखने को मिलते हैं, और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इसे याद रखें, क्योंकि सिर्फ वो लोग जिन्हें अतीत के बारे में पता है और अतीत से सीख लेते हैं, वो ही एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं।
ये थे जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल के शब्द। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने कहा कि ये शहर शांति का प्रतीक है। इस शहर ने बहुत कुछ झेला है। यहीं पर 100 साल पहले यूरोप ने अपने आप को खो दिया था, पर आज यही शहर हमें साथ लाया है और फ्रांस और जर्मनी की दोस्ती का प्रतीक बना है। वर्डन को हमेशा याद रखा जाएगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद के शब्द। मुख्य स्मारक समारोह डुअमोंट ऑजुरी में दोपहर को होगा और इसमें 4,000 फ्रांसीसी और जर्मन बच्चे भाग लेंगे। चर्च की घंटियां पूरे शहर में सुनाई देंगी। वर्डन की जंग में लगभग 6 करोड़ बम गिराए गए थे, जिनमें से 25% फूटे ही नहीं थे, जिसकी वजह से आज भी इस जगह पर खेती करना और घरों का निर्माण प्रतिबंधित है।
पहले विश्व युद्ध की सबसे लंबी जंग के 100 साल, रिपोर्ट सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव। आज हम आपको संडे दिनभर में सुना रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम। हाल ही में पूर्व विदेश सचिव महाराज कृष्ण रसगोत्रा का आत्मवृत्तांत प्रकाशित हुआ है, अ लाइफ इन डिप्लोमेसी, जिसमें उन्होंने नेहरू काल से लेकर शीत युद्ध के अंत तक के समय को बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। रसगोत्रा को अपने कूटनीतिक करियर में निकिता क्रुश्चेव, लियोनिद ब्रेजनेव, जियाउल हक जैसे नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। हेनरी किसिंजर और मार्गरेट थैचर भी इनमें शामिल हैं। तो आखिर किस तरह का था ये सफ़र, इस बारे में रेहान फजल नज़र डाल रहे हैं एम के रसगोत्रा की इस बहुचर्चित किताब पर।
महाराज कृष्ण रसगोत्रा 91 साल के हैं, लेकिन उनकी याददाश्त हाथी की तरह है। पिछले 70 साल की सभी घटनाएं उनके अंतर्मन में इस तरह गुथी हुई हैं जैसे अभी कल ही की बात हो। कुछ मामलों में रसगोत्रा भाग्यशाली भी रहे हैं, वरना किसको इतनी नज़दीक से जवाहरलाल नेहरू, जॉन एफ कैनेडी, इंदिरा गांधी और मार्गरेट थैचर जैसी हस्तियों को देखने का मौका मिलता है। 1949 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रसगोत्रा की शुरुआती पोस्टिंग थी असिस्टेंट चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के तौर पर। उस जमाने में कैनेडा के एक मंत्री क्लेरेंस हो भारत आए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन्हें अपने साथ पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का शास्त्रीय गायन सुनवाने आकाशवाणी के सभागार ले गए।
पंडित जी ने ये सजेशन दी थी कि भाई इनको कुछ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से भी इनको कुछ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो छोटा सा एक ऑडियंस ये था हॉल वहाँ, ऑल इंडिया रेडियो में, अब भी है शायद, तो उन्होंने गाना शुरू किया। पंडित जी और वो कनेडियन मंत्री पहली कतार में बैठे थे, उनके पीछे मैं बैठा था, और पंडित जी उसको समझा रहे थे कि ये अब इसका आलाप है, इसका क्या मतलब होता है, ये राग इस टाइम का है, इसका नाम क्या है, और ये ओंकारनाथ ठाकुर जो हैं बेहतरीन म्यूजिशियन इंडिया के क्लासिकल सिंगर हैं इस वक्त, और ठाकुर जी अपने आलाप में लगे हुए थे, तो वो डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने एकदम इशारा किया बंद, गाना बंद कर दिया। पंडित जी समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। पंडित जी ने ओंकारनाथ ठाकुर से पूछा कि ओंकारनाथ जी ये आपने बंद क्यों कर दिया इसे। उन्होंने कहा बड़े तपाक से और हंस के मुस्करा के थोड़ा आयरनी से कि आप पहले अपनी बातचीत ख़त्म कर लीजिए तो मैं गाऊं। अब पंडित जी का मुंह उस वक्त देखने लायक था, लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो बहुत एक बड़े भले आदमी, ओ पंडित जी माफ़ कीजिएगा, मैं इनको बता रहा था कि ये राग क्या है, ये कैसे है, अब मैं चुप रहूँगा, आप प्लीज़ गाइए।
कवि हरिवंश राय बच्चन की रसगोत्रा से गहरी दोस्ती थी। 1955 में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गर्मियों की छुट्टियां हुई तो उन्होंने बच्चन को सपरिवार काठमांडू आमंत्रित किया, जहां वो भारतीय दूतावास में सेकेंड सेक्रेटरी के तौर पर तैनात थे। इस यात्रा के दौरान बच्चन ने कई कवि सम्मेलनों में भाग लिया।
मेरे घर में रोज बैठक होती थी उनकी, तो वो रात रात भर बैठे वहाँ, एक बजे तक दो बजे तक रोज बैठक होती थी इनकी। और एक तो इनका बच्चन जी का रिसाइटल निशा निमंत्रण द कॉल ऑफ द नाइट 9:30-10 बजे उन्होंने शुरू किया, और कुछ इंटरवल करते करते 100 कविताएं हैं उसमें, सब उन्होंने रिसाइट की। ये अमिताभ और बंटी छोटे जो हैं अजिताभ, ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, इनको हम खिलाते वाते थे, वहाँ घुमाते थे फिर आते थे। तेजी तो कमाल की औरत थी, वो क्या उनकी आवाज़, वो बच्चन जी का रिसाइटल उनकी जुबान से जो हमने सुने हैं।
दे रही कितना दिलासा आज रोके से जरा सा चांदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई है रात यादी हो गई है।
1960 में रूस के नेता क्रुश्चेव ने दुनिया के चोटी के नेताओं को उस समय के महत्वपूर्ण मामलों पर मंत्रणा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आमंत्रित किया। उसी बैठक में रसगोत्रा उस दृश्य के गवाह बने जिसकी आज के युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती। हुआ ये कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरल्ड मैकमिलन अपने भाषण में सोवियत संघ पर कटाक्ष कर रहे थे, तो क्रुश्चेव ने अपना जूता निकालकर उसे मेज पर 3 या 4 बार बजाया।
एक दिन मैकमिलन ने बोलना था, और मैकमिलन वैसे ही वो इंडियन उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैंने उसको देखा हुआ था, ड्रामा करता था, उसकी आदत थी ये, वो जेस्चर्स और पॉजेस थिएट्रिकल। और अगले दिन वही थिएटर उस शख्स ने किया, बात बात पर ताना मॉस्को पे ख्रुश्चोव पर, और उसको हिदायत के बर्लिन में कुछ गलत बात मत करना, उसके नतीजे बहुत ख़राब निकलेंगे। वो बेचारा बैठा सुन रहा था तो उसको गुस्सा आ गया, उसने जूता निकाल के ठक 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 अपने डेस्क पर मारा। वो कम्युनिस्ट वर्कर था, फैक्ट्री वर्कर था, वो अपने काम की वजह से ऊपर उठ के वहाँ लीडरशिप रोल में आया, उसने अपना गुस्सा दिखा दिया।
मैकमिलन के भाषण के बाद जैसे ही सारे शासनाध्यक्ष हॉल से बाहर निकलने लगे, रूसी प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य दौड़ता हुआ रसगोत्रा के पास ये कहने आया कि ख्रुश्चेव नेहरू से कुछ बात करना चाहते हैं।
मेरा तो इरादा अंदर जाने का नहीं था उनके रेजिडेंस में, लेकिन जवाहरलाल जी एक बड़े पुरस्पाक प्यारे शख्स थे, अपने नौजवान लोगों को तो ख़ास तौर पर बड़े प्यार से देखते थे। मुझे उन्होंने कहा कि तू भी चल, और हाथ पकड़ के आ जाओ, तो चले गए। वहाँ एक कमरे में एक टेबल पर वो बहुत से खाने का सामान लगा है, एक दूसरी टेबल पर वो कुछ वोडका की बोतल लगी हैं, कुछ वाइन्स थे, कुछ जूसेस भी थे। तो ख्रुशॉफ साहब ने 3 गिलास उन्होंने वोडका के भरने शुरू किए, छोटा गिलास होता है ना, वो तो नीट पीते हैं इन लोगों को। तो उसने पहला गिलास तो पंडित जी को दिया, दूसरा उठा के मेरे हाथ, मैं ज़रा झिझक के पीछे हो गया। तो जवाहरलाल जी ने खुद मुझे कहा कि देखो अगर पीते हो तो ले लो। तो अब मैं पीता तो हूँ, मैंने कहा तो मैंने ले लिया। अब पंडित जी ने तो उसको धीरे धीरे सिप करना शुरू किया, उनकी देखा देखी मैंने भी धीरे 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 सिप करना शुरू। अब वो ख्रुशॉफ मेरी तरफ देख, पंडित जी की तरफ नहीं मेरी तरफ देख रहा, और वो पंडित जी को एड्रेस करके कहता है देखिए साहब मॉस्को में मैं एक नौजवान को ये गिलास भर के दूँ तो वो इंतज़ार नहीं करता कि मैं अपना गिलास भी भर लूँ, वो तो उसको यूँ करता। देन ही सेड टू मी अरे भाई ए पियो इसको साहब। जैसे वो उन्होंने डाला गले में गिलास छोटा, मैंने भी डाल दिया, तो जल्दी से उन्होंने दूसरे गिलास भर दिए। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, तो मैंने घड़ी वड़ी देखी, मैं 45-40 मिनट ज़्यादा घंटे करीब हो गया था बातचीत में, बातचीत उनकी बहुत अच्छी हुई। अब मैं अपना दिल थामे हुए हूँ कि पंडित जी क्या कहेंगे। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा अरे भाई तुम ठीक हो ना, और भी टेस्ट भी किया मुझे कि मैं ठीक हूँ, उसमें मैं पास हो गया था।
रसगोत्रा ने अपनी किताब में एक बड़ा खुलासा किया है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद जब अमरीकी इंटेलिजेंस को पता लगा कि चीन परमाणु परीक्षण करने वाला है, तो कैनेडी ने अपने हाथ से नेहरू को पत्र लिखा कि अमरीका चीन से पहले भारत को परमाणु परीक्षण में मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन नेहरू ने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया।
उनका आर्गुमेंट ये था कि अगर एशिया में कोई न्यूक्लियर बम टेस्ट करने वाला है कैनेडी का, तो वो भारत की डेमोक्रेसी होना चाहिए। उनको भांप लगी थी कि चीन करने वाला है, तो वो चाहते थे कि अगर ये पावर डिस्प्ले होनी है एशिया में तो एक डेमोक्रेसी करे, वो डेमोक्रेसी कौन सी है, भारत। तो उन्होंने ऑफर किया पंडित जी को कि राजस्थान में एक पिलर बना के उसके ऊपर वो एक बम हमें दे देंगे जो हम विस्फोट जिसका कर दें तो दुनिया पर खुल जाएगी भाई भारत भी कोई चीज़ है भाई, अब चीन करते फिरें उसके बाद वो फीका हो जाएगा उनका वो काम। पंडित जी का रिएक्शन पॉजिटिव था, उन्होंने भाभा को बुलाया मुंबई से। उसी दिन शायद जी पार्थासारथी चीन से वापस लौटे, पार्थासारथी जी का रुझान वो उसके खिलाफ था इस चीज़ के। फॉरेन पॉलिसी में अक्सर होता है इश्यूज जो होते हैं ना, लोग एक प्रॉब्लम के जो तरीका है हल करने का उसके आदी हो जाते हैं, उस आदत से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनका यही कि नहीं साहब ये तो न्यूक्लियर डेंजर है, न्यूक्लियर चीज़ ही ख़राब है, बम हम तो नॉन वायलेंट फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। ये आर्गुमेंट ये कि साहब ये रूसियों को पता चल जाएगा, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, अगर वो हमने मान लिया होता चीन कभी भारत पे हमला नहीं करता, 65 की जंग नहीं होती, 71 की भी जंग नहीं होती।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमरीका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने बदसलूकी का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हुए इंदिरा गांधी को बैठक से पहले 45 मिनट तक इंतजार कराया। मैंने एमके रसगोत्रा से पूछा आप वहां मौजूद थे, क्या वास्तव में ऐसा हुआ था?
हुआ है, मेरे ख्याल में निक्सन के अलावा और कोई राष्ट्रपति ये करेगा नहीं।
पूरा बताइए कि उन्होंने कारण क्या बताया है?
कारण
मतलब मुलाकात फिक्स थी, आप लोग वहां जाके बैठे हुए थे,
बिल्कुल
वो निकले ही नहीं,
और नहीं वो कुछ कर भी नहीं रहे अंदर, ये दोनों बैठे हैं हेनरी किसिंजर और प्रेसिडेंट निक्सन, और तहैया क्या है कि इस लेडी को जरा दिखाएं कि इसकी जगह क्या है, इंसल्ट करना था ना उसको। बातचीत शुरू से ही कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, पहली जो मुलाकात होती है उनके लॉन में, उसमें निक्सन ने बिहार में कहीं फैमन हुआ था थोड़ा उसका जिक्र किया और कहा कि उसके लिए हम इतनी एड दे रहे हैं, यहाँ जो 10 लाख 8 लाख 10 लाख बंगाली हमारे यहाँ पहुँच गए थे कैंप्स में भूखे मर रहे हैं, हम पे जो बोझ हैं उसका कोई जिक्र नहीं किया। इनको कुछ शक था कि ये तो जंग का ऐलान करने आई है और हम इसको दिखाएंगे कि ये ठीक नहीं है, तो ये बदतमीजी का बदसलूकी थी। डिलिबरेट थे।
और जब फाइनली बैठक हुई तब मिसेस गांधी का रिस्पांस क्या था?
शी इग्नोर्ड ऑल दिस। बड़ी डिग्निफाइड लेडी थी वो, उसने जो अपना कहना था वो कह दिया। वो मैसेज उसका ये था कि आप इसको बंद करवा सकते हैं या खान को, ये जो चल रहा है कत्लेआम वहाँ चल रहा है बांग्लादेश में, इसको आप बंद करवाइए और ये रेफ्यूजीज जो सारे हैं ये वापस जाएंगे उस मुल्क में, हमारे मुल्क में इनके लिए जगह नहीं है।
80 के दशक में रूस ने अत्याधुनिक विमान MiG-29 बनाया था। वो इस बात को इस हद तक गुप्त रख रहे थे कि उन्होंने उसके अस्तित्व तक को नकार दिया। रस्कोत्रा उस बैठक में मौजूद थे जहां ये तय किया गया कि रूस भारत को MiG-29 विमान देगा।
वो वहाँ बैंक्वेट था मॉस्को में, हम बैठे थे, वही तो होस्ट थे। मिसेस गांधी से मेरी बातचीत होती रहती थी कि किसी, उन्होंने कहा हुआ था कि देखना कुछ इस मामले में हो सकता है कि नहीं। जब यू नो ये ऐसी मीटिंग्स में कुछ एक वक्फा आ जाता है कि कुछ बातचीत नहीं हो रही, मैंने उसका मौके को पकड़ा। डिफेंस मिनिस्टर जो उनका था वो मेरे अपोजिट टेबल पर बैठा हुआ था, तो मैंने उसको एड्रेस किया कि साहब आपके पास एक प्लेन है, मैंने कहीं इसका अकाउंट देखा है ये किसी अमेरिकन जर्नल में, हम चाहते हैं आप हमें सभी हथियार आपसे हम लेते हैं, आप देते नहीं हैं, तो उसका कुछ होना चाहिए, हल होना चाहिए। उसका ट्रांसलेशन हुआ तो मैंने यही रिपीट किया उसको। ब्रेजनेव कुछ सुन रहा था, उसने कहता है वो लाउडली सेज हे, उस्टिनोव को कहता है व्हाट इज ही सेइंग, तो उस्टिनोव ने फिर उसको बताया कि ये कह रहा है। देन डू वी हैव द प्लेन और डू वी नॉट हैव द प्लेन, उसने कहा जी है तो सही, पहले तो डिनाई कर रहे थे कि है ही नहीं, लेकिन नंबर काफ़ी नहीं है और अभी ट्रायल भी चल रहे हैं, तो उसने कहा कि नंबर काफ़ी नहीं है, क्या बात है, उनको जो चाहिए तो दो उनको बात हो गई, फैसला हो गया। मेरा ये निष्कर्ष जो मैंने अपने करियर से निकाला है कि किसी इख्तलाफ राय है आप या किसी आपने कुछ लेना है तो कन्फ्रंटेशन की बात मत की, मौका देख के थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, कोई ह्यूमर कोई उस सिचुएशन में है तो उसको सामने लाइए। कई मौक़ों पर ऐसे मैंने इख्तलाफ राय को अलहदा रख कर तो उससे हल निकल आते हैं। डिप्लोमेसी में ह्यूमर का एक बड़ा रोल है।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
आपने सुनी MK रसगोत्रा के कूटनीतिक सफ़र की कहानी। और 2 महीने से आदेश कुमार गुप्त जी जो है वो लगातार IPL की घटनाओं पर आपको रिपोर्ट दे रहे थे और आज उसका फाइनल मुकाबला है। आपको पता ही होगा, आप सब भी शायद TV के सामने आ चुके होंगे, तो बताइए आदेश जी कि क्या है आज, क्या लग रहा है?
जी देखिए, अभी से भविष्यवाणी करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ताज़ा समाचार ये है कि बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब थोड़ी ही देर बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगी तो हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरेगा। थोड़ी देर पहले डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब देखना कि शिखर धवन, मॉजेस हेनरिक्स और युवराज सिंह किस तरह से मजबूती देते हैं। वैसे विराट कोहली का ये मानना है कि फाइनल मुकाबला ज़बरदस्त होगा,
बहुत कंपेटिटिव गेम होगा, ऐसे वन साइडेड गेम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों टीम में ऐसे प्लेयर हैं जो गिव अप नहीं करने वाले हैं और ऑब्वियसली एक फाइनल है और ट्रॉफी जीतने का मौका है तो सब लोग अपना 120% देंगे, लेकिन डेफिनेटली जो मैच होगा वो बहुत कंपेटिटिव होगा और एक अच्छी लेवल ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगी।
और इस फाइनल मुकाबले की खासियत ये है कि जो भी टीम जीतेगी वो IPL में पहली बार चैंपियन बनेगी। उधर भारत के लिए एक अच्छा समाचार ये है कि भारत की सीमा पूनिया ने अमेरिका में पैट यंग्स थ्रोअर्स क्लासिक चैंपियनशिप में 62.62 मीटर की दूरी तक डिस्कस थ्रो करते हुए न सिर्फ स्वर्ण पदक अपने नाम किया बल्कि रियो ओलंपिक का टिकट भी हासिल कर लिया। वैसे रियो में जगह बनाने के लिए 61.00 मीटर की दूरी तक डिस्कस थ्रो करना ही काफ़ी था, लेकिन सीमा पूनिया ने अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए रियो के लिए क्वालिफाई किया। तो अगले कार्यक्रम में बताएंगे कि हैदराबाद ने कितना लक्ष्य रखा है।
जी, तब तक तो काफ़ी कुछ तस्वीर सामने उभर आएगी। बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और अब जल्दी से सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार,
دلی میں افریقی مول کے لوگوں پر حملے کے سلسلے میں پولیس نے 5 لوگوں کو گرفتار کیا. 3 الگ الگ معاملوں میں افریقی مول کے 6 لوگوں پر حملے کی شکایت کی گئی تھی. سنیکت راشٹر کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں بھومدھیہ ساگر میں ناو حادثوں میں 700 پرواسیوں کے ڈوب کر مرنے کی آشنکا ہے. ایران کے سنسکرتی منتری نے کہا ہے کہ اب ایران کے ناگرک حج کے لیے سعودی عرب کے مکہ نہیں جائیں گے. یوکرین کی سینا نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں روس سمرتھت الگاؤ وادیوں کے ساتھ جھڑپوں میں 5 سینکوں کی موت ہو گئی ہے. برٹن کے یورپی سنگ میں رہنے کے مسئلے پر رائے شماری کے کچھ ہفتے پہلے ہی پردھان منتری ڈیوڈ کیمرن اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں کے نشانے پر ہیں. بی بی سی سماچار.
پرمکھ سماچار سنا رہی تھی ہریتا کانڈپال اور آج اسٹوڈیو سنبھال رہے ہیں دیپک جسروٹیا. 1.5 گھنٹے بعد گھٹنا چکر میں آپ سے دوبارہ ملیں گے. نکھل رنجن کو سبھی ساتھیوں سنگ انمتی دیجیے. نمسکار.